ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम षष्ठम स्कंध अध्याय 3 और श्लोक संख्या 26। इस अध्याय का नाम है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। एवं विमृश्य सुधियः भगवती अनन्ते सर्व आत्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मे न दण्डम् अहर्नति अथ यदि अमीषाम स्यात् पातकम् तत् अपि हन्ते उर्गायवाद। एवं ब्रह्मस्य सुधियो भगवत् अनन्ते सर्वात्मना विदतो खलु भाययोगम् तेमेन दण्डम् अर्थत् यद्यमीषाम् स्यात् पातकम् तदपि हन्ति उर्गयावाद। एवं ब्रह्मस्य सुधियो भगवत् अनन्ते सर्वात्मना विदते खलु भाययोगम् तेमेन दण्डम् अत्यन्त अद्यमीषाम् स्यात् पातकम् तदपि हन्ति उर्गायवादः। एवं ब्रह्मस्य सुधियो भगवत् अनन्ते सर्वात्मना विदते खलु भाययोगम् तेमेन दण्डम् अत्यत् यद्यमीषाम् स्यात् पातकम् तदपि हन्ति उर्गायवादः। માતાજી એવમ ઇસ પ્રકાર પરમેશ્વર વિચાર કરકે સુધીય વે જિનકી બુદ્ધિ પ્રખર હૈ ભગવતી ભગવાન મે અનંતે અસીમ સર્વ આત્મના પ્રાણ પ્રણ સે વિદતે ગ્રહણ કરતે હૈં ખલો નિસંદેહ ભાવયોગમ ભક્તિ યોગ તે એસે લોક મે મેરા ન નહીં દંડમ દંડ કે અરહંતિ યોગ હૈ અથ ઇસલિયે યદિ યદિ અમીષામ ઉનકા સ્યાત હૈ પાતકમ કોઈ પાપ કર્મ તત વહ અપી ભી હંતિ નશ કરતા હૈ ઉર્ગાયવાદ પરમેશ્વર કે નામ કા કીર્તન અનુવાદ શ્રીલ પ્રભુપાદ જી કે દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ મહારાજ કી જય અતઃ ઇન સભી બાતો પર વિચાર કરતે હુએ બુદ્ધિમાન લોક હર એક કે હૃદય મે સ્થિત તથા સમસ્ત શુભ ગુણો કી ખાન ભગવાન કે પવિત્ર નામ કે કીર્તન કી ભક્તિ કો અપના કર સારી સમસ્યાઓ કો હલ કરને કા નિર્ણય કરતે હૈ એસે લોક મેરી દંડ દેને કી સીમા મે નહીં આતે સામાન્યતઃ વે કભી કોઈ પાપ કર્મ નહીં કરતે કિંતુ યદિ વે ભૂલ વશ યા મોહ વશ કભી કોઈ પાપ કર્મ કરતે ભી હૈ તો વે પાપ ફલો સે બચા લિયે જાતે હૈ ક્યોંકિ વે સદૈવ હરે કૃષ્ણ મંત્ર કા કીર્તન કરતે હૈ તાત્પર્ય ઇસ સંબંધ મે શ્રી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર નિમ્નલિખિત શ્લોક ઉદ્ધિત કરતે હૈ જો બ્રહ્મા દ્વારા કી ગઈ સ્તુતિઓ મે સે એક હૈ અથાપિ તે દેવ પદાંબુજ ઉદ્ધય પ્રસાદલેશાનુગૃહિત એવ હી જાનાદિ તત્ત્વમ ભગવન મિહસ્તો ન ચાન્યમ રૂકોપિ ચિરે વિચિંતવન. તાત્પર્ય યહ હૈ કે વૈદિક શાસ્ત્ર કા અત્યંત પ્રકાંડ પંડિત તક ભગવાન કે અસ્તિત્વ તથા ઉનકે નામ યશ ગુણ ઇતિહાસ સે પૂરી તરહ અનુગત હો સકતા હૈ જબકિ એક અપંડિત ભી ભગવાન કી સ્થિતિ કો સમજ સકતા હૈ યદિ વહ કિસી તરહ ભક્તિ મે લગ કર ભગવાન કા શુદ્ધ ભક્ત બન જાતા હૈ. ઇસીલિયે યમરાજ દ્વારા કહા ગયા યહ શ્લોક કહતા હૈ કે એવમ વિમિશ્ય સુધિયો ભગવતી. જો લોગ ભગવાન કી પ્રેમા ભક્તિ કરતે હૈ વે શુદ્ધિય યાની બુદ્ધિમાન બન જાતે હૈ કિંતુ વૈદિક પંડિત કે સાથ એસા નહીં હોતા કેંકિ વહ કૃષ્ણ કે નામ યસ્થ ગુણો કો નહીં સમજતા. શુદ્ધ ભક્ત વહ હૈ જિસકી બુદ્ધિ વિમલ હોતી હૈ વહ સચમુચ વિચારવાન હોતા હૈ કેંકિ વહ ભગવાન કી સેવા મે કિસી દિખાવે કે લિયે નહીં અપિત પ્રેમ સે મન વચન તથા શરીર સે લગા રહેતા હૈ. અભક્તગણ ધર્મ કા દિખાવા કર સકતે હૈ કિંતુ યહ અધિક પ્રભાવશાલી નહીં હોતા ક્યોંકિ વે દિખાવે કે લિયે મંદિર યા ગિરજાઘર મે જાતે હૈ કિન સોચતે કુછ ઓર હૈ. એસે વ્યક્તિ અપને ધાર્મિક કર્તવ્ય કી ઉપેક્ષા કરતે હૈ ઓર યમરાજ દ્વારા દંડનીય હોતે હૈ. કિંતુ યદિ કોઈ ભક્ત અપની પુરાની આદતો કે કારણ અનિચ્છા સે યા સંયોગવશ પાપ કર્મ કરતા હૈ તો સે ક્ષમા કર દિયા જાતા હૈ. સંકીર્તન આંદોલન કી યહી મહત્તા હૈ. બહુ સુંદર પ્રસંગ ચલ રહા હૈ સમય ઇસી પર હમ લોગ વિચાર કરેંગે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચચ્રુ નૃતમ એન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो प्रसंग इस समय चल रहा है ये हम सब भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत की जितनी भी कथाएं हैं इसका एक खास संदेश होता है हम सब भक्तों के लिए। तो जैसा कि आप सब सुन करते आए हैं इस कथा को, ये अजामिल का प्रसंग है और आप सभी भक्त जानते हैं किस तरह से अजामिल पाप कर्म लिप्त था, लेकिन उसने जो सबसे अंतिम पुत्र था उसका नाम क्या रखा था, नारायण रखा था। और जब यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए तो उसने डर से नारायण का नाम लिया। वास्तव में वह भगवान का नाम नहीं ले रहा था, वो किसको बुला रहा था, अपने बेटे को नारायण। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं कि चूंकि नाम भगवान का है इसलिए वो बच गया। नारायण का नाम लेते ही भगवान के दूत आ गए। इससे यह संदेश मिलता है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। यही प्रथा चली आ रही थी कि लोग अपने बच्चों का नाम किसके रखते हैं, भगवान के नाम से रखना चाहिए कि उसका यही लाभ है ना, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे ही रखना चाहिए। क्योंकि अजामिल अगर अपने बेटे का नाम नारायण नहीं रखता तो शायद उसका उद्धार नहीं होता, तो नारायण नाम इसे रखा। तो इससे संदेश है कि हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर जो गृहस्थ आश्रम है अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखें, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन पूरे दुनिया का दुर्भाग्य यही है कि लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे बहुत कम रखते हैं। टिंटू पिंटू किंटू चीकू कुछ ना कुछ रखेंगे है ना, लेकिन भगवान का नाम नहीं रखेंगे और बहुत शॉर्टकट में रखते हैं, राइट। ऐसा नाम रखे जिससे नहीं ढूंढना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ, तो ये अच्छा नहीं है। तो हमारा हमें ये शिक्षा देना चाहिए कि नहीं, भगवान का नाम रखना चाहिए। परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने क्या किया, जिनका नाम हेलमेट था उनका नाम रखा हीरा पंचमी दास। सोचने वाली बात, प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया है ना, उनका पहले नामकरण किया है ना, मिस्टर कीथ का नाम कीर्तनानंद दास रखा, राइट। ऐसे कितने नाम, सबका का नाम देखें जो हमारे पुराने जीबीसी सन्यासी थे फॉरनर, तो उनका नाम सब ऐसे ही था, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, नामकरण किया उनका। जैसे आप सबका भी जब दीक्षा हो जाता है तो नामकरण होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा वास्तव में यही होना चाहिए। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, अब ये अव्यवस्था फैल रही है, लोग अपने बच्चों का नाम ऐसा नहीं रख रहे हैं। तो हमें उनको शिक्षा देना चाहिए कि भगवान का नाम रखने से कितना लाभ होता है। और अजामिल कि कथा सिर्फ भागवत में आ गई, सिर्फ इसके लिए कि नारायण भगवान के नाम का क्या महत्व है, इसको समझाने के लिए एक कथा जो है बताएगी। आप समझिए, महत्व ही है। तो इस तरह से जब विष्णु दूत आ गए तब वो लोग घबरा गए, क्योंकि पहली मुलाकात थी यमराज के दूत से और भगवान के दूत से, ये पहली मुलाकात थी। इसके पहले कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। और जो यमराज के दूत थे उनको ये जानकारी थी कि हमारे जो लीडर हैं अर्थात यमराज, वही सर्वे सर्वा हैं, सारे पापियों का निर्णय वही लेते हैं, है ना। और वो आए थे अजामिल को लेने के लिए, लेकिन देने पड़ गए, लेने के लिए आए थे लेकिन लेने के देने पड़ गए, और नहीं ले जा सके क्योंकि उनको क्षमा कर देना पड़ा। तो अजामिल को लेने के लिए आए थे लेकिन छोड़ करके जाना पड़ा, लेने के देने पड़ गए। ऐसा होता है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि लेने का देना हो जाता है, जैसा इस प्रसंग हुआ। और वे इतने उलझन में आ गए और गुस्से में आ गए, क्योंकि यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। इसीलिए जब वापस गए, जो ये प्रसंग चल रहा है, जब वापस गए तो बड़े गुस्से में पूछा कि मैं तो समझ रहा था कि आप ही सर्वे सर्वा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई और है जो आपसे भी महान है और निर्णय करने वाला है। ये सोचते थे कि ये जो हमारी शंका है इसका समाधान करना चाहिए। और यमराज भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो क्या है, 12 महाजनों में से एक महाजन है। जैसे इंद्र स्वर्ग को कंट्रोल करते हैं, तो पापियों को दंड देने के लिए जो नर्क लोक है उसके भी अधिकारी कौन है, यमराज हैं। जब भगवान के द्वारा ही इनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन उनके जो थे सैनिक जो आए थे लेने के लिए, तो उनको बहुत आश्चर्य, को समझना चाहते थे कैसा कैसे हो गया। तो उनका शंका समाधान करने के लिए ही यमराज ऐसा बोल रहे हैं। यमराज जी ने ये भी बताया पिछले श्लोक में, आप सुना होगा कि किस तरह से जो उन्होंने पूछा कि हम कैसे पहचाने कि विष्णु के दूत हैं, ये भगवान के भक्त हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जिसके माथे पर वैष्णव तिलक हो और गले में तुलसी की माला हो, वो हमारे रेंज से बाहर हैं। ये पहचान है। क्योंकि उन्होंने पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे कि विष्णु का भक्त है ये अभक्त, हम कैसे पहचानेंगे। तो कहें कि क्योंकि पहले तो शरीर दिखाई देता है ना, वो जाते हैं तो शरीर पहले देखते हैं, लेके किसको जाते हैं, आत्मा को ले जाते हैं, शरीर वहीं छोड़ देते हैं, राइट। ऐसा जब यमराज आते हैं तो शरीर नहीं लेके जाते, उसकी आत्मा को क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं, शरीर तो यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता। फिर शरीर में ये जो हम वैष्णव तिलक लगाते हैं 12 जगहों पे, ये हमारा सबसे बड़ा पहचान है। इसीलिए भक्तों को पूरा तिलक लगाना चाहिए, शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए, पूरा कपड़ा पहन लिया तिलक लगा दिया, ऐसा नहीं है। तिलक लगाना भी एक भक्ति का एक अंग है कि हम भगवान को स्थापित करते हैं 12 जगह पर, इसीलिए नाम लिया जाता है केशवाय नमः, इसीलिए ना कि भगवान केशव यहां पर क्या हो उपस्थित हो, तो इसलिए 12 नाम बताए गए हैं। तुमको तिलक लगाना चाहिए क्योंकि यही हमारा आभूषण है, सच बड़ा श्रृंगार है हमारा, क्या वैष्णव का तिलक लगाना ये बहुत आवश्यक है। और उसके बाद फिर कंठी माला पहनना ये भी बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी समझाए, आप लोगों को सुना भी होगा कि गार्ड और डाक में क्या अंतर है, जीओडी गार्ड, डीओजी डाक, है ना। ये तीन शब्द दोनों में है, बस अंतर क्या है, जीओडी हो गया है और उसमें डीओजी हो गया है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब कोई गाड़ी आती है नगर निगम को कुत्तों को उठाने के लिए, तो जिन कुत्तों के गले में बेल्ट नहीं होती उसी को पकड़ के ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डॉग बेल्ट, क्योंकि वो जान जाते हैं कि इस कुत्ते में बेल्ट लगी है, इसका मतलब इसका कोई मालिक है, इस वजह से छोड़ देते हैं। लेकिन उन कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं जिनके गले में बेल्ट नहीं होती। तो उसी प्रभुपाद जी कहते हैं हम भी, हमारा मालिक कौन है, कृष्ण है, इसीलिए हमारे गले में एक क्या है, एक माला है, गॉड बेल्ट। प्रभुपाद गॉड बेल्ट, ये जो गॉड बेल्ट है पढ़ना चाहिए ताकि यमराज के जब दूत आएंगे तो आपको पकड़ के नहीं ले जाएंगे, क्या कहेंगे कि इसका भी कोई मालिक है, वो कौन है, कृष्ण। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जिसका इसमें वर्णन किया गया है, तो यमराज जी समझा रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन में कितनी शक्ति है इससे पता चलता है। प्रभुपाद जी हम सभी जानते हैं कि जब अमेरिका गए थे तो बहुत धन लेके नहीं गए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा धन लेके गए जिसको कहा गया है गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मूवमेंट अगर खड़ा कर दिया तो किसकी शक्ति के बल पर, किसकी ताकत पे, हरिनाम संकीर्तन की ताकत पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यह शक्ति पूरे शास्त्र में हरिनाम का महत्व भरा पड़ा है, लेकिन हमारे सामने तो ज्वलंत उदाहरण स्वयं प्रभुपाद जी हैं, एक शुद्ध भक्त नाम के बल पर ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हनुमान जी जितने भक्त हैं, ये सब भगवान का नाम लेकर के भक्ति करके ही भगवान का दर्शन किए हैं और जो इच्छा उन्हें चाहिए प्राप्त किए हैं। ये तो सातम बड़ा लड़के जो प्रत्यक्ष हमारे सामने दिखाई देता है श्री प्रभुपाद जी, उन्होंने जो चमत्कार किया आज पूरी दुनिया को बदल दिया है ना, किसके बल पर, श्री हरि नाम के बल पर, क्योंकि भगवान का जो नाम है गोलोक प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये डायरेक्ट गोलोक से आया हुआ प्रेमधन है, इसीलिए हमारे वैष्णव सिद्धांत में नाम का महत्व दिया जाता है कि नामे रति, नाम के प्रति यदि हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न होगा तभी नामी के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, जान लीजिए। अगर भगवान का नाम जप करने में हमारा मन नहीं लगता, कीर्तन करने में हमारा मन नहीं लगता, तो ध्यान रखिए, नोट करिए इस बात को, अगर नाम की प्रति आपके हृदय में रुचि नहीं है तो भगवान कृष्ण के प्रति रुचि कैसे हो सकती है, क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अगर नाम के प्रति रुचि नहीं है इसका मतलब कि कृष्ण के प्रति क्या रुचि है आपकी, तो बहुत आवश्यक है जिस नाम को हम लेने में सोचते हैं कि 16 माला किसी तरह से पूरी हो जाए, खींचते रहते हैं काउंटर, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें नाम अपराध, वैष्णव अपराध, बहुत अटेंटिवली हम एक एक शब्द का उच्चारण करें और सुने, हमें कोई जल्दी नहीं कि हमें 16 माला खींचना है, 16 माला करें लेकिन विधिवत करें तब उसका फल मिलता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा किया कि जिस परंपरा से हम जुड़े हैं एक एक लाख कितना जप करते थे, हरदास ठाकुर 64 माला जप, प्रभुपाद जी इतने कृपालु है कि हमें कितना बोला कि कि सब 16 माला, एटलीस्ट अर्थात 16 माला से कम नहीं, ज्यादा हो सकता है लेकिन 16 से कम नहीं, लेकिन जप होना चाहिए, तब नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। अच्छा जप करने से, कीर्तन करने से, जैसे जब सुबह शाम कीर्तन होता है तब कितना डांस करते हैं, क्योंकि हमारा मोमेंट ही आंदोलन ही इसका है कीर्तन करने का। तो नाम के प्रति रुचि हमारे हृदय में उत्पन्न होना चाहिए, यही संकीर्तन का इतना बड़ा लाभ है कि यदि आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये कीर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, है ना? क्योंकि प्रेम और विश्वास तो बहुत ही आवश्यक है भगवान के प्रति। हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए, जितना ही विश्वास होगा हमारा प्रेम भगवान के प्रति उतना ही बढ़ेगा। ये जान लीजिए, प्रेम और विश्वास ये दोनों हमारा बेसिक है। जैसे कहते हैं सीढ़ियां आप कितना चढ़ो, देखिए पहली सीढ़ी हमारी क्या है, प्रेम और विश्वास। इसको अच्छी तरह प्रभुपाद जी बहुत समझाते, कई बार प्रभुपाद जी बोले हैं लव ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। जहां प्रेम और विश्वास होता है सहयोग वही होता है, अगर प्रेम और विश्वास नहीं है तो सहयोग नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमें कोऑपरेट करें, भगवान का कृपा हमको मिले, भगवान मुझे सहयोग दें, तो सहयोग तभी मिलेगा जब भगवान के प्रति आपके हृदय में प्रेम और विश्वास दोनों बढ़ेगा। जानना चाहिए प्रभुपाद जी क्यों सफल हुए, सोचिए, इसलिए कि नाम के प्रति भगवान के प्रति पूरा विश्वास और प्रेम दोनों था, इसलिए भगवान स्वयं कोऑपरेट करते चले गए। अर्थात शुद्ध भक्त जो इच्छा करता है भगवान उसे क्या करते हैं, पूरा करते हैं। प्रभुपाद जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही किया, प्रभुपाद चाहते थे कि यहां पे हरे कृष्ण नारायण का भव्य मंदिर बने। इस जमीन को लेने में कितना नाको चना चबाना पड़ा था प्रभुपाद जी को, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, बड़े मुश्किल से लड़ते झगड़ते एक जगह मिली, जंगल में मंगल। यहां तक कि प्रभुपाद जी से बोला कहां इस भीड़ स्थान, यहां मंदिर बनाएंगे, यहां बहुत चूहे रहते हैं, जानवर रहते हैं, मच्छर बड़े बड़े काटते हैं, कि विदेशी भक्त मच्छर काटते तो उनका चेहरा लाल हो जाता है इससे समझ एरिया ऐसा था। लेकिन प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर मंदिर बना दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि दिल्ली में और भी साउथ दिल्ली में राधा पार्षदिक भव्य मंदिर होना चाहिए और 10 छोटे छोटे मंदिर होने चाहिए। एक किसकी इच्छा थी, प्रभुपाद जी की इच्छा थी, प्रभुपाद जी इच्छा पूरी किया। तो शुद्ध भक्त जो भी इच्छा करता है भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान का वचन, भगवान ने वचन दिया हुआ है, अनंत चिंतन तो माम ये जनाह पर उपास्ते तेसानुक्ता नाम योगक्षेम वहां में हम। भगवान ने वचन दिया हुआ है कि अर्जुन जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरा करता हूं, सारी इच्छाएं, एक इच्छा नहीं सारी इच्छाएं। आज चूंकि कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम और विश्वास नहीं है, इसलिए इंसान क्या करता है कि कृष्ण को छोड़ करके दर दर भटकता है, क्यों, उसे विश्वास ही नहीं। अगर तुम विश्वास करोगे तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करता हूं, एक दो इच्छाएं नहीं सारी इच्छाएं। ये भगवान, भगवान को बचे, भगवान जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने जो कुछ बताया अगर तुम पूरी तरह से इस पर प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो तुम्हें वही मिलेगा जो मैंने बताया है। लेकिन लोगों में विश्वास नहीं है, जैसा कि प्रभुपाद जी ने यहां बोला है कि लोग दिखावटी हैं, वो भक्ति करने का ढोंग रचते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जैसे छुट्टी का दिन हुआ, दिल्ली के जितने बिजनेसमैन लोग हैं सब चलो वृंदावन, क्यों नजदीक है, दो घंटे पहुंच जाते हैं, वहां जाएंगे खूब बांके बिहारी करेंगे, राधे राधे बोलेंगे, गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, और जैसे ही वापस दिल्ली आएंगे फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। सुधार क्यों नहीं हो रहा है? सुधार इसलिए नहीं हो रहा है कि हम दिल से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। यह सच्चाई है। आज समाज में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, बड़े बड़े साधु संत प्रचार कर रहे हैं, उनके भागवत कथा में पांच पांच दस दस लाख लोग आते हैं, संगीत में कथा चल रही है। आप खुद सोचे कि परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, तो संगीत के साथ बैठे थे, कथा का असर कैसे पड़ेगा? सुनाने वाला और सुनने वाले ये सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, राइट? इसलिए असर नहीं पड़ रहा है कि भीड़ जितने धार्मिक स्थान हैं इस समय ये सब पिकनिक स्पॉट बन गए हैं। उत्तराखंड में जो घटना घटी इसीलिए हुए, प्रकृति साथ नहीं दिया, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है अत्याचार। आप दारू पीटकर गंगा जी में डुबकी लगाते हो हरिद्वार में जाकर के, है ना? तो क्या होगा? वही होगा कि असहनीय हो जाता है, सहन नहीं होता। तो एक सब क्या है? एक दिखावा है, ये बिल्कुल सच्चाई से परे है। भगवान सबकी दिल की बात जानते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे एक आरती है ना, कुछ दिन पहले हम मनोज जब पिछली बार आए थे तो मनोज कुमार के घर गए थे, उन्होंने कहा कि देखो मैंने आरती, मेरी जो आरती फिल्म थी हिट हो गई। आरती जानने क्या थी? ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अपन क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, है ना? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट में रतन का, एक तक अगरबत्ती जलाए आदमी अब 24 घंटे ही कहता रहे फिर भी टेंशन उसके घर से जाने जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि दिल में ऐसा नहीं है। तो लिप सर्विस से भगवान प्रभावित नहीं होते, आपका दिल में क्या भावना है भगवान उससे प्रभावित होते हैं। प्रभुपाद यही बताते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, हृदय की बात जानते हैं। तो दुनिया इसी दिखावे में है। किसी तीर्थ धाम में जाओ भीड़ नजर आती है। एक बार क्या हुआ, भक्तचारु महाराज ने बड़ा अच्छा एक प्रसंग सुनाया था। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भगवान के पास पहुंचे वैकुंठ लोग, और पृथ्वी से ही गए थे। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी लीला बड़ी अपरंपरार है, अभी अभी हम पृथ्वी लोक से आए हैं, क्या भक्ति चल रही है वहां पे, है ना? कि मैं हरिद्वार गया, ऋषिकेश, जितने धाम मैं जहां गया भीड़ ही भीड़, वृंदावन द्वारिका जहां देखो जगन्नाथपुरी भीड़ ही भीड़। लेकिन हे प्रभु जब मैं आपके धाम वैकुंठ लोक आता हूं तो मैं भीड़ नजर नहीं आती। अरे जो इतनी भक्ति कर रहे हैं कम से कम कुछ तो यहां पहुंचना चाहिए। तो पृथ्वी पर इतनी भीड़ भक्तों की, लेकिन वैकुंठ लोक तक कोई आ नहीं पा रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूं? भगवान मुस्कुराए कि नारद जी वास्तव में मैं चाहता हूं कि सब मेरे ही अंश हैं, सब मेरे पास आए, लेकिन क्या करें वो आना नहीं चाहते। कैसा कि हाँ कि आप कैसे करें, मैं देखा इतना सब भक्ति कर रहे हैं, है ना? कहें कि अगर आपको विश्वास न हो तो मैं आपको पावर देता हूं कि जिस तरह से आप सब शरीर पूरे यूनिवर्स हर लोक में आप भ्रमण करते हैं, मैं आपको शक्ति देता हूं कि पृथ्वी से किसी भी व्यक्ति को जो आपको सब बड़ा भक्त दिखाई दे उसको पकड़ के ला सकते हैं मेरे पास। नारद जी नीचे आए, एक व्यक्ति पर उनकी नजर टिक गई कि बहुत तगड़ा भक्ति कर रहा था, उसके पास जाके नारद जी ने बोला कि वाह आपकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि हमको भेजा है कि ऐसे भक्त को तत्काल मेरे पास लेके आओ। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भगवान ने आपको इसी वक्त बुलाया है, तो कहीं नारद जी मैं ही मिला आपको, मुझे अभी इतनी जल्दी क्या है चाले की, अभी मुझे बहुत काम करने हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े हो जाएं, उनकी शादी कर दें, उनको बिजनेस में लगा दें, तो हमारे पास काम ही क्या रहेगा, हम भगवान के पास आ जाएं, तब आप पाना लेके जाना। उसके बाद काफी साल के बाद आए तो बच्चों की शादी हो चुकी थी और बच्चे भी हो गए, बिजनेस भी संभाल दिया, फिर कही अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, अब तो तुम्हें चलना चाहिए। तो कहे नारद जी आप तुम्हारे पीछे ही पड़ गए, आप खुद समझिए कि बच्चे अभी बिजनेस में कच्चे हैं, अभी उनको ट्रेंड करना है कि धन कैसे कमाना चाहिए, है ना। तो उसके बाद हम चलेंगे आपके साथ। इस बार नारद जी बहुत लेट गए, है ना। जब इस बार जी नारद जी आए उसके घर, वो बुरा दिखाई नहीं दिया, मिला ही नहीं, क्योंकि मौत हो चुकी थी, मृत्यु प्राप्त हो चुका था। तब नारद जी ने ध्यान दिया कि बुढ़ा गया तो गया कहां। तो ध्यान से जब देखा तो अपने घर के सामने वो कुत्ता बन करके बैठा हुआ है, क्योंकि मरने के बाद वो कुत्ते की योनि में जन्म लिया और अपने घर के सामने वो बैठा था। अब नारद जी गए और उसके कान बोला कि भैया तुम मर चुके हो, अब कुत्ता बन चुके हो। कहे नारद जी आपको हो क्या गया है, कुत्ता बन के फिर भी हम नहीं छोड़ रहे। कहीं नहीं प्रभु जी के आदेश है, मैं क्या करूं। कहे कि देखो नारद जी, मैंने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को धन सौंपा है, वो धन को रखवाली कौन करेगा, मैं ही करूंगा। तो कुत्ता बन करके धन की रखवाली कर, तो आजकल यही स्थिति है, 99% लोग जो है इसी में लगे हुए हैं, कोई जाना चाहता ही नहीं। भगवान इसीलिए कहे गीता में कि मनुष्याणाम हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी ओर आता है, अनुयायी में से कोई मुश्किल से तत्व से मुझे जान पाता है। तो सदियों में, कई हजार सदियों में एक प्रभुपाद जैसा भक्त आ जाता है, जो चमत्कार करके दिखा देता है, संख्या बहुत कम है, ऐसी है संसार की, है ना। पंडित की बात यहां पर चल रही, पंडितों की तो बहुत बुरा हाल है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से हम हैं, वहां पे रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाता है, आप लोग सुना होगा रामचरितमानस का अखंड पाठ किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पाठ कर रहे हैं, लेकिन खा पी क्या रहे हैं, भांग बन नहीं होती, भांग छानते हैं, है ना, सुरती तंबाकू पान खा रहे हैं, नाम किसका रहे हैं, भगवान का, सब कुछ खा पी रहे हैं, लहसुन प्याज भी खा रहे हैं, जो कुछ खाना पीना सब चल रहा है, भगवान का कीर्तन भजन सब चल रहा है। आजकल के पंडितों की यही दुर्दशा है, इसलिए यज्ञ, इस कलयुग में यज्ञ मना के हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही यज्ञ है, कि इसमें कोई मिलावट कर ही नहीं सकता, है ना। बाकी यज्ञ सामग्री में पंडित भी शुद्ध नहीं मिलते, कि पंडित भी चाय पीते सब, जिसका वर्ण प्रभुपाद ने तात्म दिया है, पंडित अपंडित, तो प्रभुपाद जी कहते अपंडित भी पंडित नहीं है, वो अपंडित है, लेकिन अगर वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, तो उस पंडित से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी बात को लेकर के प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे, आप लोगों ने सुना होगा पंडित और मोची का, है ना। एक बार क्या हुआ, नारद जी आए तो एक पंडित से मुलाकात हो गई, पंडित बड़ा विद्वान, आप जानते हैं ऐसे ऐसे भक्त हैं, है ना। एक लड़का भी 3-4 दिन पहले दिल्ली मंदिर में आया था बनारस से, वो लड़की है, 700 श्लोक गीता के मैंने शुरू से लेकर अंत और अंत से लेकर के शुरू तक सुना सकती है, माने रिवर्स भी सुना सकती है। यह है आश्चर्य नहीं आश्चर्य। अब एक प्रभु जी कल हमको यहां मिले थे, वो यहां के बड़े अच्छे भक्त हैं, अभी तक दीक्षा नहीं लिया है लेकिन बहुत अच्छे हैं, उनको उनका नाम भूल गया हूं, कल हमको मिले थे, पूरा श्लोक उनको याद है लेकिन उन्होंने अभी तक पान खाना नहीं छोड़ा। इसी मंदिर की बात कर रहा हूं, इसलिए उनकी दीक्षा नहीं होती है ना। तो श्लोक रटने से याद करने से कुछ नहीं होता, यदि आप जीवन में अपने उसको नहीं उतारते हैं तो क्या फायदा रटने से। जैसे एक तोता है और राम राम रटाने से रट लेता है और राम राम बोलता है, जैसे बिल्ली पकड़ती है तो राम को भूल जाता है, टें 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 बोलने लगता है, अपनी असली भाषा बोलने लगता है, तो रटने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे पंडित बड़े विद्वान थे, नारद जी जब मिले तो उन्होंने कहा कि मेरा बहुत अहोभाग्य है कि आपके दर्शन में बैठिए, जब दोबारा आप भगवान के पास जाना तो मेरे बारे में जरा पूछना कि मेरे ऊपर भगवान कब कृपा करेंगे, कब बुलाएंगे, है ना। कह ठीक है, तुम्हारा संदेश मैं दे दूंगा। अब उसके बाद नारद जी फिर जब दूसरे जगह पहुंचे तो एक मोची वट वृक्ष, जानते ना बरगद का वृक्ष को वट कहते हैं, तो वट वृक्ष के नीचे वो मोची जूते की सिलाई पॉलिश का काम करता था। तो नारद जी उसके पास गए, एक पंडित के पास गए और एक किसके पास गए, अपंडित, पंडित अपंडित, अपंडित के पास, जो पंडित नहीं था अर्थात वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, एक मोची था, उसके पास नारद जी गए, उसने भी बैठाया और उसने भी वही संदेश भेजा भगवान को कि हमारे पर भगवान कब कृपा करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारा भी संदेश भगवान तक क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। यही हुआ, कुछ दिन के बाद फिर नारद जी आ गए तो सबसे पहले पंडित जी के पास गए। अब पंडित जी से बोला, पंडित जी ने बड़ा अवगत किया, इसलिए ज्यादा अवगत किया कि संदेश का उत्तर लेके आए होंगे नारद जी। तो बैठाया तो हाथ जो के बोला कि नारद जी, जब आप भगवान के पास गए तो भगवान क्या कर रहे थे। नारद जी ने कहा कि देखो पंडित जी, भगवान को कोई काम धाम तो रहता नहीं, लेकिन जब मैं प्रवेश किया उनके पास पहुंचा तो मैं देखा एक काम कर रहे थे, तो बड़े ध्यान सुना क्या काम कर रहे थे। कहा कि मैंने देखा कि सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। बोला सुई के छेद से हाथी निकल सकती है। पंडित गुस्से में आ गए, ऐसे कैसे हो सकता नारद जी, आप खुद सोचे नारद जी कभी सुई के छेद से हाथी निकल सकती है, कि भाई तुम्हें विश्वास हुआ ना हो लेकिन जो मैंने देखा वो हमने बता दिया, भगवान यही कर रहे थे। कहीं नाला मुझे तो बिल्कुल विश्वास रहे, कभी तुम्हें वक्त लगेगा भगवान तक पहुंचने में नारद जी, कि इसको विश्वास ही नहीं भगवान की शक्ति का। अब नारद जी अब पंडित के पास गए, अब पंडित मोची के पास, जब पंडित नहीं था, पंडित कहते जो ज्ञानी होता शास्त्रों का ज्ञाता होता, उसके पास गए। उसने बड़ा भगा, उसने कहा कि नारद जी जब भगवान से आप मिले तो भगवान क्या कर रहे थे। कह के देखो मोची, भगवान कोई काम धाम तो रहता नहीं लेकिन मैंने देखा कि भगवान कुछ कर रहे थे, तो उसकी उत्सुकता जागी क्या कर रहे थे। कह के मैंने देखा कि भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। जैसे ये बात बोली मोची खड़ा होकर नाचने लगा, हरे कृष्णा ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಕೀರ್ತನ ಕರ್ಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಾರ್ಜಿಸರ ಹಾನಿಗೆ ಹರೇ ತುಮೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇ ಕೇ ಪೂರಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇ ಆಪ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಯ ಉಲ್ಟಾ ಬೋಲಾ ಕಿ ಆಪ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಯ ಲೋ ಲೇಕಿನ್ ಮುಜೆ ತೋ ಪೂರಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಐಸಾ ಕರ್ ಸಕತೆ ಹೇ. ತನ್ನ ನಾರದ ಜಿ ಬಡಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಚ್ಛಾ ಕೇ ಕಿ ಆಪ್ ಖುದ ಸೋಚೆ ನಾರದ ಜಿ ಜಬ್ ಯೇ ವೃಕ್ಷ ದೇಖ ಕಿತನಾ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷ ಹೇ ಬರಗದ ಕಾ ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ಇತನೆ ಬಡೆ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷ ಕೋ ಏಕ್ ಛೋಟೆ ಸೇ ಬೀಜ ಮೇ ಡಾಲ್ ಸಕತೆ ಹೇ. ಯೇ ಬಟ ವೃಕ್ಷ ಜೊ ಹೋತಾ ಹೇ ನಾ ಉಸ್ಕಾ ಬೀಜಾ ಸರಸೋ ಸೇ ಛೋಟಾ ಹೋತಾ ಹೇ. ಸಾನೆ ಕಹೀ ಜಬ್ ಇತನೆ ಬಡೆ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷ ಕೋ ಏಕ್ ಛೋಟೆ ಸೇ ಬೀಜ ಮೇ ಡಾಲ್ ಸಕತೆ ಹೇ ತೋ ಸುಯಿ ಕಿಚ್ ಸೇ ಹಾಥಿ ನಿಕಾಲ ತೋ ಆಸಾನ್ ಕಾಮ ಹೇ. ತಬ್ ನಾರದ ಜೀ ನೇ ಕಹಾ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಕೃಪಾ ತುಮೇ ಜಲ್ದಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೋಕಿ ತುಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಚಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೇ ವಿಶ್ವಾಸ. ತೋ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಫಲದಾಯಕ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಗರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇ ತಭಿ ಏಕ್ ಅಪಂಡಿತ ಭಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಭಕ್ತ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಏ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ನೇ ಸಮಝಾಯಾ ಕಹತೆ ನಾ ಅಭಕ್ತ ಅಪಂಡಿತ ಕಿ ಬಾತ್. ಅಗರ್ ಯ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ನಾಮ ಕಿತನಿ ಶಕ್ತಿ ಹೋತಿ ಇಸೇ ಪತಾ ಚಲತಾ ಹೇ. ಯದಿ ಆಪ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ಲೇತೆ ಹೇ ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಕೃಪಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಿ. ತೋ ಹಮೇ ಕೃಪಾ ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಬನಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಉಸೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಡಾ ಸುಂದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಹೇ ಕಿ ಜಿಸ್ಕಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿಮಲ್ ಹೋತಿ ಹೇ. ದೇಖೋ ಹೃದಯ ಜಿಸ್ಕಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಬುದ್ಧಿ ಉಸ್ಕಿ ಕ್ಯಾ ಹೋತಿ ಹೇ ವಿಮಲ್ ಹೋತಿ ಹೇ. ಅಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೇ ಸಂದೇಶ ಮೇ ಬತಾ ದಿಯಾ ಹೇ ಸಿಚಾರಕ ಮೇ ಕಿ ಏ ಜೊ ಚಿತ್ತ ಹೇ ಇಸ್ಕೋ ಹಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ನಿರ್ಮಲ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಔ ಕಿಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಹೋಗಾ ವೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಹಮೇ ಸಾಬೂನ್ ಯಾ ಸರ್ಫ್ ಕಾ ಘೋಲ್ ಪೀನೆ ಸೇ ಹೃದಯ ನಹೀ ಸಾಫ್ ಹೋಗಾ. ಕಿ ಜಬ್ ಹೃದಯ ಕಿ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ನಿ ಹೇ ತೋ ಕೋಯಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೀ ಲೇಂಗೆ ಹೃದಯ ಸಾಫ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ನಾ ನಾ ಏಕ ಸೇ ಕಪಡೆ ಕಿ ಧುಲಾಯಿ ಹೋ ಸಕತಿ ಹೇ, ಶರೀರ ಕಿ ಧುಲಾಯಿ ಹೋ ಸಕತಿ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಹೃದಯ ಕಿ ಸಫಾಯಿ ಹೋ ಸಕತಿ ಹೇ ಕಿಸ್ಸೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮನ್ ಸೇ. ತಪ್ನಾ ಹೃದಯ ಜಿಸ್ಕಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಇಸ್ ಸಮಝ ಲೀಜಿಯೇ ಉಸ್ಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಭಿ ಕ್ಯಾ ಹೋತಿ ಹೇ ವಿಮಲ್ ಹೋತಿ ಹೇ. ತಬ್ ಚಿತ್ತ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ತಬ್ ಬಸೆಂಗೆ ಜಬ್ ಹಮಾರ ಹೃದಯ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ನಿರ್ಮಲ್ ಹೋಗಾ. ಇಸಿಲೇ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜೋ ಕಿ ಯುಗಲ್ ಅವತಾರ ಹೇ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಯುಗಲ್ ಅವತಾರ ಇಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಪರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಾ ಉದ್ಧಾರ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಯೇ ಔರ್ ಹರಿನಾಮ್ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಉದ್ಧಾರ ಕರ್. ಹರಿನಾಮ್ ಇತನಿ ಬಡಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇ. ಬಸ್ ಈ ನಾಮ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜೋ ಹಮಾರೇ ಹೃದಯ ಮೇ ರುಚಿ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ. ಆಜ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಹಮಾರೇ ಉದಾಹರಣ ಹೇ. ಆಜ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಗರ್ ಇತನೇ ಸಫಲ ಹುಯೇ ತೋ ಸಬ್ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಿ ನಾಮ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಪಕಡ ಕೆ ರಖ. ಸೋಚನೆ ವಾಲಿ ಬಾತ್ 70 ಸಾಲ ಕೆ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಆದ್ಮಿ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಸಮಝ ಲೇತಾ ಹೇ. ಓ ತಾಶ್ ಪತ್ತಾ ಫೇಂಕ್ತಾ ಹೇ, ಪಾರ್ಕ್ ಮೇ ಜಾ ಕೆ ಗಪ್ ಸಬ್ ಲಡಾತಾ ಹೇ, ಹೇ ನಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರ್ತಾ, ದುಕಾನ್ ಖೋಲ್ ಕರ್ಕೆ ಬೇಚನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೇ 70 ಸಾಲ ಕೆ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ. ಲೇಕಿನ್ 70 ಸಾಲ ಕೆ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ನಾಮ ಕೆ ಬಲ್ ಪರ್ ಇತನಾ ಬಡಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಖಡಾ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಆಪ್ ಜಾನ್ತೇ ಹೇ ಕಿ ಅಭಿ 7 ಜನವರಿ ಕೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿ ಜೊ ಬೀಜಿಂಗ್ ಮೇ ಹೇ ಚೈನಾ ಮೇ, ತೋ ಆಪ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೆ ಕಿ ಚೈನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೇ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಆಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಾ ಅನುವಾದ ಕಿಸ್ ಮೇ ಕರಾ ದಿಯಾ ಹೇ, ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇ. ಇಸ್ಕಾ ಬಢಿಯಾ ವಿಮೋಚನ್ ಹುವಾ ಕಹಾ ಬೀಜಿಂಗ್ ಮೇ ಜೋ ಚೈನಾ ಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇ ವಹಾ ಪೇ. ಔರ್ ಇಸ್ಕಿ ಫೋಟೋ ಭಿ ಆ ಗಯಿ ಹೇ ಇಸ್ಕಾ ಪೂರಾ ನ್ಯೂಸ್. ಕಿತನಿ ಬಡಿ ಬಾತ್ ಹೇ ಕಿ ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇ ಭಿ ಗೀತಾ ಔರ್ ಭಾಗವತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕರಾ ರೇ. ಯೇ ಕಿಸ್ಕಿ ಕಿ ದೇನ ಹೇ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ನೇ ಕಿತನಾ ಬಡಾ ಚಮತ್ಕಾರ ಕಿಯಾ. ದುನಿಯಾ ಕಾ ಜೋ ಸಬ್ಸೆ ಕಠಿನ್ ಭಾಷಾ ಹೇ ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ಗೀತಾ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೇ. ಕಭಿ ಕಭಿ ಜೋ ಚೈನೀಸ್ ಭಕ್ತ ಹಮಾರೇ ಯಹಾಂ ಆತೇ ಹೇ ಭಿ ಮಾಯಾಪುರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹೋನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೇ, ಚೈನೀಸ್ ಬಹುತ್ ಭಕ್ತ ಹೇ. ಓ ಕುಛ ಸಮಝೆ ಯಾ ನಾ ಸಮಝೆ, ಲೇಕಿನ್ ದೋ ಚೀಜ ಜರೂರ್ ಸಮಝೆ ಹೇ, ಏಕ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಔರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ದೋ ಚೀಜ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ನೇ ಇಸೇ ದೋ ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಔರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಬಲ್ ಪರ್ ಇತನಾ ಬಡಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಖಡಾ ಕರ್ ದಿಯಾ. ಕಿತನೆ ಭಕ್ತ जयदस प्रभु कल आए थे, कल मिले थे हमसे, जयदस प्रभु है ना, वो प्रसाद की उसमें भक्त बन के सोचने वाली बात है, कितनी ताकत है इसमें। तो प्रसाद अब प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है कि प्रभुपाद जी लिखवाते थे, स्लोगन लिखा जाता है। हम लोग जब नए भक्त थे, ये पीले कपड़े वाले जैसे भक्त थे, तो मैं और ब्रजहरी प्रभु यहीं पे नए पीले कपड़े भी थे, हम दोनों साथ ही ज्वाइन किए थे, हम ब्रजहरी प्रभु है ना, और ऐसे पीले कपड़े। कहने का मतलब कि देखिए शक्ति कितनी है नाम की है ना। हम लोग राधा राज बिहारी का जो फ्लावर है बाल्टी में लेकर के समुद्र फेंकने जाया करते थे, सफाई करते थे, जो सीनियर ब्रह्मचारी होते थे सन्यासी उनका टॉयलेट साफ करते थे, हम लोग सब काम किए हैं यहाँ पे। आप समझ इतना क्यों, क्योंकि हमारी विनम्रता तभी आएगी जब हम इस तरह से काम सेवा करेंगे। अहंकार से जो है दूर रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए जब भक्ति की जो प्रोसेस है उसको हमें सीखना बहुत जरूरी है, जो सिखाया जाता है। क्योंकि हम लोग जब ज्वाइन किए थे उसमें देवकिरण प्रभु हमारे डायरेक्टर थे शिक्षा गुरु, उन्होंने वो सब डांट टपट के ट्रेनिंग देते थे बहुत अच्छी तरह से। तो कहने वालों की एक ट्रेनिंग जो होती है वैष्णव बनने का, क्योंकि हमारे जितने अनर्थ हैं वो सब क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। उस समय तो इतनी स्ट्रिक्ट शक्ति थी कि कोई बाहर जा नहीं सकता था, पीला कपड़े वाला विदाउट परमिशन जा ही नहीं सकता था, है ना। हम लोग तभी बाहर निकलते थे बंबई शहर जब हरिनाम संकीर्तन हुआ था, कि हफ्ते में एक दिन नगर संकीर्तन सब, उसमें श्रीधर स्वामी सारे महाराज लोग सब हुआ करते थे और सब जाते थे। यहां जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो जानते होंगे, उस समय कैसे कि सब के सब छोटा बड़ा कोई सब के सब जाते थे, एक लहर क्रिएट कर देते थे जिस गली में जहां हम लोग पहुंच जाते थे। तो ये मूवमेंट ही इस प्रकार का है, हरे कृष्णा आंदोलन है ही कीर्तन करने के लिए, है ना। प्रभुपाद ने यही चमत्कार किया, ग्रेता को बनेता को सदा हरिवार, एक एक भक्त हमारा क्या बनना चाहिए, प्रचारक बनना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य है कि हम दूसरों को भक्त बनाएं। ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। चैतन्य महाप्रभु कहते भारत भूमि हेल जनजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है उसका कर्तव्य है वह कृष्ण की भक्ति करके स्वयं अपना उद्धार करे और दूसरों को कृष्ण की भक्ति दे करके उसका भी क्या करे, उद्धार करे। इसके लिए हम इवेंट ज्वाइन किए हैं। इसलिए एकमात्र प्रभुपाद जी है जो कि पूरी दुनिया में सही ज्ञान का प्रचार इस कान के माध्यम से हो रहा है। आप जान लीजिए कि इस कान के अलावा जितना भी प्रचार किया जा रहा है सब बहुत विचित्र ढंग से प्रचार किया जा रहा है। ऐसे से बाबा आपको दिखेंगे कि वो भगवान की फोटो भी नहीं रखते अपने स्टॉल पे, अगर किसी को देते हैं तो अपने ही फोटो देते हैं, राइट। अरे भगवान की तस्वीर देना चाहिए। हमने कल ही ऐसा उदाहरण देखा, हमें बहुत दुख हुआ। एक स्वामी जी आए थे ऋषिकेश से, तो हेमा जी की लड़की जो शादी थे हम लोग गए थे, तो उन्होंने क्या दिया, अपने ही फोटो कुछ लिख करके अपने फोटो फ्रेम करा के दे रहे हैं, जबकि हम लोगों ने क्या दिया, राधा राज बिहारी को दिया। यही अंतर है, ये अंतर है, आप समझ लीजिए। प्रभुपाद जी ने कभी अपना प्रचार नहीं किया, प्रभुपाद जी को तो कोई जानता भी नहीं जब तक हम न बताएं। अब सब जाने सब हमको देखकर क्या बोलते हैं, ओ हरे रामा हरे कृष्णा वाले आगे क्या बोलते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, ये थोड़ी बोलते हैं कि रजनीश वाला आ गया। मैं जब पूनम प्रेसिडेंट था तो मैं रोसो रजनीश से भी मिला था, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मल्होत्रा जी, तो उनका बड़ा भाई मल्होत्रा जी बाहरी मल्होत्रा वो हमारे इस्कॉन के भक्त, उनका छोटा वाला भाई रजनीश का भक्त है ना। तो वाले उससे बोला था कि भाई एक बार मुझे मिलवाओ तो सही उससे, है ना। कहने का मतलब है कि इस्कॉन ही एक ऐसा मिंट है जो सही ढंग से एज इट इज प्रचार कर रहा है। गीता का अनुवाद बहुत लोगों ने किया, टिप्पणी लिखी, लेकिन एज इट इज लिखने की हिम्मत किसी में नहीं पड़े, एकमात्र प्रभुपाद जी को छोड़ करके। ये प्रभुपाद जी तो उनकी हम लोग सेना है, हमारा ही कर्तव्य होता है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका प्रचार प्रसार करे, बिंदास करे, बिना डर के करें कि प्रभुपाद जी कभी समझौता नहीं किया किसी से, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं। तो हम भगवान का प्रचार करना है, उद्धार कौन करेंगे? भगवान करेंगे। हम बताते कि हम हमारे फाउंडराचार्य प्रभुपाद जी हैं, हमारे पूरे बुक स्टॉल में भगवान का सर, नहीं तो ऐसे ऐसे साधु जो भी जेल भी चले गए हैं ये सब अपने ही फोटो मारते हैं, पानी छिड़क देंगे जिसके पानी का एक कण पड़ गया उनका शिष्य बन गया, कुछ भी खाओ पियो कुछ भी जब करो इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं जैसे एक और बाबा जी निकले हैं, गोलगप्पे खा लो कृपा मिल जाएगी, सोचने वाली बात है ना। यही बंबई में एक मंदिर है जिसका नाम जरीमरी माता, छुई में मंदिर, इन सब देवी देवताओं कोई नाम जानता नहीं, शास्त्र में कोई नाम नहीं है, लोग अपने आप रख लेते हैं, माने अंधेर नगरी चौपड़ राजा है अंधेर हो गया है, माने भगवानों की बाढ़ आ गई, कितनी गलत बात। साउथ इंडिया जाओ तो लोग फिल्म स्टारों का क्रिकेटरों को भगवान कहते हैं, उनके मंदिर बना के पूजा कर लेते हैं, दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बार जो अहमदनगर के डीएम थे उनके घर हमने कीर्तन किया, पूना में जब थे तो वहां, तो उन्होंने वेणुगोपाल दूत बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, तो कीर्तन करने के बाद दूसरे दिन कहे स्वामी जी अब आप आए हैं चलो आपको शिरडी बाबा का दर्शन करा देते हैं। मैं उनके साथ गया, बड़ा वीवीआईपी दर्शन, अर्थात जब हम शिरडी बाबा के पास पहुंचे तो पब्लिक पूरा बंद करा दिया था क्योंकि डीएम के साथ गए थे, है ना, पूरी हमने वहां पे एक लाइन देखी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन साईं राम, लोगों ने यहां तक कर दिया है जबकि दुनिया जानती है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, लेकिन लोगों ने इसको भी नहीं छोड़ा, साईं राम लगा दिया, माने हद हो गई है, किसी चीज की कोई सीमा होती है, कोई बोलने वाला नहीं है, है ना। एक बार हमारे एक भक्त कथा सुना रहे थे, अपने इस्कॉन के भक्त हैं, उन्होंने अपनी राम कथा में बोल दिया कि वाल्मीकि जी डाकू थे, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया, मैं सत्य बोलना भी गुनाह है, सोचने वाली बात। इन परिस्थितियों में हमें प्रचार करना है, लेकिन हमारा भक्त डरता नहीं है, हम वही कहेंगे जो हमारी परंपरा कहती आई है, हम सिद्धांत समझौता नहीं करेंगे, जेल जाएंगे लेकिन हम यही बोलेंगे कृष्ण ही भगवान है, राइट, भाई फर्जी लोग भगवान नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, किसी को अच्छा लगे या न लगे। तो हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना प्रभुपाद जी ने इसीलिए किया है और भक्तों को संदेश दिया है हम सबके लिए कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमको प्रचार करना पड़ेगा, कभी नहीं सोचना कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगे तब हम प्रचार कार्य आरंभ करेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इस भौतिक संसार में जो दुखालय है यहां इन्वायरमेंट अपने माहौल बनेगा, हमें इन्वायरमेंट को अपने अनुसार बनाना है जैसा कि प्रभुपाद जी ने किया। तो हरे कृष्णा के मंत्र के द्वारा हर चीज संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, ये प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? टाइम ज्यादा हो गया। हाँ बोले प्रभुपाद जी।
हरे कृष्णा, आपने जैसे बताया कि वैकुंठ में तो 100 की संख्या में भी लोग नहीं जा सकते, बाकी भक्त करोड़ों है, तो जो करोड़ों भक्त है वो परिपक्व नहीं हुए, वैकुंठ जाने के काबिल नहीं हो गए, तो वो भक्तों को यमराज के अधिकार क्षेत्र के बाहर ही है, बराबर है?
क्या आप कहना चाहते हैं?
जो अपरिपक्व भक्त है, जो गोलोक या वैकुंठ जाने के अभी लायक नहीं हुए है, उनको जब भी देह छोड़ते हैं तो यमराज उसको हाथ नहीं लगाते हैं।
हाँ मैं समझ गया। देखो भगवान ने गीता में बहुत क्लियर कर दिया है कि जो मेरा भक्त होता है, वास्तव में जो मेरा भक्त होता है और कभी भक्ति उसकी विफल नहीं होती, वो सफल ही रहती है, लेकिन उसको अगला जन्म मिलता है इसी संसार में। लेकिन श्रीमंत गए, भगवान कहते हैं एक अच्छे परिवार में जहां उसे खाने पीने की चिंता न होकर के पुनः भक्ति में लग करके अपने आप को क्या करता है, अपग्रेड करते वो चला जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इंडियन जो इंडिया में जन्म लेता है उसको नहीं सोचता कि हम जिंदगी भर इंडिया में जन्म लेंगे, मरने के बाद इतना बड़ा पृथ्वी भगवान कहीं भी आपका जन्म हो सकता है। आप यहां के आज करोड़पति परिवार जन्म हुआ तो अगले मरने के अगर आपने दान दक्षिणा दिया हुआ है, भगवान के मंदिर बनाने में सहयोग किया हुआ है, भगवान का नाम लिया हुआ है, तो क्या होगा अगले जन्म में आप इस संसार में ही आएंगे, लेकिन आप अमेरिका किसी रईस के घर में जन्म हो सकता है। अर्थात पूरे यूनिवर्स में भगवान आपको कहीं भेज सकते हैं। एक भक्ति का भक्ति जो करते जो नाम लेते हैं उसका कभी विनाश, उसका फल मिलता ही मिलता है। एक बड़ी सुंदर प्रसंग, समय हो तो मैं दो मिनट लगाऊंगा इसी पर। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ये हमारे भक्त लोग इसको समझाते रहते हैं इसी समय का, कि एक व्यक्ति जो है मुरमुरे का गट्ठर लेकर के आ रहा था, है ना, मुरमुरा समझते ना, मुरमुरा मोरी मोरी, उसका गट्ठर लेकर बड़ा हल्का होता है गट्ठर का। वो आदमी जब आ रहा था अपने घर लेकर के वो बवंडर के चक्र में फंस गया, तो गट्ठर क्या है उड़ गया। उसने बहुत जंप लगाया, जब गट्ठर नहीं मिला तो जानते क्या बोलता है, कृष्णा अर्पणम, कि जब हाथ नहीं लगा तो किसको हमने दे दिया, कृष्ण को दे दिया। उसके बाद एक बार नाम लिया उसने, दूसरी बार तब नाम लिया जब उसकी पत्नी मायके चली गई थी, तो पत्नी प्रेमी था वो, उससे रहा नहीं गया, वो पत्नी को लेने के लिए गया समुद्र को, नदी के उस पार उसकी पत्नी का घर था। तो ये जो है नाव में बैठ करके गुलाब के दो फूल लेकर के गया था, है ना, जब बीच धारा में पहुंचा वहां पे तो उसके हाथ से एक फूल गिर गया, है ना, तो दूसरा फूल तो पकड़ा हुआ था, उस फूल के पकड़ने के चक्कर में दूसरा फूल भी गिर गया, है ना। और जब दोनों फूल गुलाब के बह गए तो क्या बोलता है, कृष्णा अर्पणम, के कृष्ण मैंने आपको भेंट कर दिया, है ना। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के पास पहुंचा, यमराज ने कहा कि बेटा तुमने पूरे जिंदगी भर गलत काम किया है, लेकिन चूंकि दो बार तुमने भगवान का नाम लिया है इसलिए दो पल के लिए तुम्हें स्वर्ग में चलना ही पड़ेगा, तो ये बताओ कि तुम पहले स्वर्ग जाना चाहते हो या नर्क। तो उसने कहा कि पहले स्वर्ग देख लें कि दो पल ही का समय है, देख लें, उसके बाद तो नर्क में ही रहना है। ओ गया यमराज जिसको लेके गए, इंद्र की सभा लगी हुई थी, दरबार लगा हुआ था, अप्सराएं डांस कर रही थी। तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपने घर में गार्डन भी बनाते हैं, तो वहां पे इंद्र राजा हैं, है ना, तो वहां भी क्या है एक वन है जिसका नाम क्या है, नंदन वन। तो नंदन वन से ही हो गया, जब अंदर पहुंचे तो कहा भाई दो ही पल तुम्हारे पास हैं। इंद्र उसका स्वागत किए कि भाई हमारे स्वर्ग की एक खासियत है कि हमारे स्वर्ग में जो भी आता है उसकी जो इच्छा होती है उसको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। आदमी बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दो तलवार चाहिए। उसने कहा कि हमें दो तलवार चाहिए, तो यमराज और इंद्र दोनों अवाक रह गए, अरे यहां पे आया हुआ है ना, इतना सुंदर ऐश्वर्य है, सब कुछ है, सुंदर अप्सराएं हैं, कुछ तो अच्छी चीज मांगना चाहिए था, क्या मांगा, तलवार मांगा। तो बिना मन के उन्होंने तलवार उसको पकड़ा दिया, वो तलवार लेकर के रिवर्स दौड़ा, पीछे गया, कहां गया, नंदन वन में। अब वहां पे सुंदर सुंदर खूबसूरत पारिजात के पुष्प खिले हुए थे, उसने दोनों हाथ से बोलता है कृष्णा अर्पणम, कृष्णा अर्पणम, जितने फूल है काट लगा और भगवान को अर्पित करने लगा। इतने में इंद्र और यमराज दोनों दौड़ कर गए और पकड़ा हले कि भाई बस करो बस करो, अब तुम यही रहोगे कि तुमने इतना नाम ले लिया पारजात पुष्प चढ़ा करके तुम्हारे सारे पाप कट गए। ये है सच्चाई कि नाम में बड़ी शक्ति है। अजामल में भी अनजान में नाम लिया लेकिन वो बच गया, राइट। तो भगवान का नाम जो ले रहा है ना, उसका कुछ नहीं।
मेरा प्रश्न ये था कि जो यमराज के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो गया है और उसको वैष्णव भी बन के नया जन्म लेने का है, तो उसका कंट्रोलर कोई अलग है या उसका
कंट्रोल सबके कंट्रोलर वास्तव में भगवान है, चाहे देवी देवता हो कोई भी हो। यही तो ये समझ में आ गया, वो लोग पहले कंफ्यूज थे कि वास्तव में वो लोग यही सोचते थे कि सबका कंट्रोलर हमारे यमराज है, लेकिन वहां पता चला कि यमराज का भी कोई कंट्रोलर है। क्योंकि इसमें आगे के श्लोक में आएगा कि यमराज बताते हैं कि ब्रह्मा सूर्य जितने भी हैं ये सब के नियंता कौन है, एक आगे चलकर श्लोक है। तो हम उसी श्लोक की चर्चा करें जो आज का है। आगे चलकर आप यही पाएंगे कि यमराज जी ये भी समझाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जितने भी देवी देवता हैं सबके कंट्रोलर कौन है, कृष्ण है। आगे आएगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा।
हाँ बोल।
ये कि मैं देखा चार नियम का पालन करते हुए बहुत से भक्त ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं, अच्छा सीरियस भक्ति करते हैं, तो कभी कभी घर में उनके कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं या कष्ट आ जाता है तो भगवान को दोष देने लगते हैं कि हम इतना नियम पालन करते हुए भी हमें क्यों ऐसा कष्ट मिल रहा है, हम भक्ति नहीं करें।
बहुत अच्छा प्रश्न है कि नियम पालन करते हुए भी, भक्ति करते हुए भी हमें कष्ट मिलता है। ये नहीं भूलना चाहिए भक्तों को कि हम उतने महान भक्त नहीं हैं पांचों पांडव की तरह। पांचों पांडव इतने महान भक्त हैं कि कृष्ण के साथ थे तब भी उनको कष्ट झेलना पड़ा, समझ जाते। इसी के लिए कि इस संसार में आए हैं कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा, आप समझे कि नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम भगवान का नाम ले अब बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। ये चार जो कष्ट है भुगतना ही पड़ेगा, या आप ध्यान रखिएगा, एक गलत फहमी नहीं रही है कि नहीं नहीं अब भगवान का नाम रहे कर रहे हैं तो बुढ़ापा नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगी। भाई सच बड़ा कष्ट यही है, बाकी जो जो पारिवारिक कष्ट होते छोटे मोटे कष्ट हैं, आप इससे भी नहीं बच सकते। लेकिन नाम लेते रहेंगे तो बचेंगे कैसे कि जब अगला जन्म होगा तो आप इस संसार में आएंगे नहीं। ऐसी भक्ति करो कि संसार में आने की नौबत नहीं आए, ऐसी भक्ति हम करना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि राम राम जपना पराया माल, अपना भक्ति भी करते रहे और अंदर अंदर काम भी चलते रहे। ऐसा नहीं चलेगा, यही है दिखावटी भक्ति कि हम करते कुछ हैं कहते कुछ हैं, कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि भगवान हृदय की भावना से प्रभावित होते हैं। तो समस्याएं तब खत्म होंगी जब पूरी तरह से समर्पण आप करेंगे। जैसे वृत्तासुर का नाम सुना होगा, कल कांग्रेगेशन में जो एक श्लोक आया था है ना, उसमें बहुत सुंदर, उसमें इतना बढ़िया वृत्तासुर समझाया है कि जिस तरह से चूजा पक्षी का जो बच्चा होता है उसको चूजा बोलते हैं, जिसको पंख नहीं निकलते। एक चूजा क्या होता है, अपनी मां पर पूरी तरह से आश्रित रहता है, पूरी तरह से आश्रित रहता है। जो मां आती है चोंच में दाना लेकर के, तो दो जो छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं चूजे, वो अपने झोंसे से निकलते हैं कि मां आई है कुछ लेके आई है। वो मां क्या करिए, थोड़ा दाना उसके मुंह डालेगी थोड़ा उसको डालेगी, राइट। यही चीज वृत्तासुर बताते हैं कि जब इस तरह से समर्पण होता है भगवान के प्रति, तब भगवान क्या करते हैं, हमारा लालन पालन और सुरक्षा करते हैं। लेकिन इस समर्पण की भावना आए तब तो, ऐसा नहीं होता है, कोई कितना भी कैसा नहीं हो पाता, तो उसकी सुरक्षा भगवान करते हैं। उसे कई तीन चार उदाहरण वृत्ता से बड़ा सुंदर उदाहरण, ये सब कथा नहीं है, ये हमारे समझने के लिए है। जैसे कल कृष्ण ने भगवान राम के बारे में एक प्रश्न पूछा था कि भगवान को यह और था कि भगवान राम माने सीता जी को वनवास माने वहां छोड़ दिया था कि लौकुश जब पैदा हुए। हमें पता ही नहीं है कि भगवान भगवान होते हैं और त्रिकाल लग गए सब कुछ मालूम होता है। एक उदाहरण हम आपको समझाते हैं, बंद करेंगे। आप खुद सोचिए, अंगूठी एक थी भगवान राम को, कितनी अंगूठी थी? एक अंगूठी थी। अब बानर कितने थे? काउंटलेस, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर कैलकुलेटर काउंट नहीं कर, इतने बानर थे। अंगूठी एक थी, अब भगवान अंगूठी सब बानरों को नहीं दे सकते थे, अंगूठी एक ही थी। जब सारे बानर सुग्रीव के आदेश से पूरे पृथ्वी के चारों तरफ सीता जी खोज करने के लिए निकल गए, खुद सोचिए कि बानर उनकी खोज कर रहे हैं जिनको देखा तक नहीं है और फिर भी खोज रहे हैं। सेवा इसे कहते हैं। बानरों ने सीता जी कभी देखा नहीं था, लेकिन आदेश हो गया, ढूंढ रहे हैं, और उसको ढूंढ रहे जिसको देखा नहीं था। भाव ऊंचा था। लास्ट में भगवान राम किसको बुलाते हैं? हनुमान जी को। हनुमान जी आते हैं, प्रेम से भगवान के सामने बैठते हैं, तब अंगूठी भगवान किसको देते हैं? हनुमान जी को। हे हनुमान जी, जब आप सीता जी से मिलेंगे तो ये अंगूठी उनको देंगे तो वो पहचान जाएंगी आप मेरे दूत हैं। भगवान को सब मालूम था कि हनुमान जी ही पहुंचेंगे, लेकिन भगवान ने क्या किया? सारे बाहरों की सेवा में लगाया, सेवा में सबको लगाया, लेकिन जानते थे पहुंचेंगे कौन? हनुमान जी। यही हुआ। तीसरे, सब को सेवा में लगना चाहिए, चाहे छोटा बानर हो चाहे बड़ा बानर हो। भगवान की नजर में सब क्या होता है? सेवक होता है। इसी गिलहरी को भी भगवान ने महत्व दिया। सब कथा में सुना, बहुत समय ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब, भगवान आपकी सेवा हृदय से कैसे करें, इससे प्रभावित होते हैं। और समर्पण भाव आ गया, कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा तो भगवान सारा कष्ट झेल लेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर जितने कष्ट आए झेला। उदाहरण इसलिए ठीक। हरे कृष्णा। जय श्री राधा राधा राज बिहारी भगवान की। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की। गंतराज सिंह भागवतम की। हरे कृष्णा।